ओम ऋग्वेद प्रथम मंडल 24वां सूक्त और 9वां मंत्र। शतम् ते राजन् भिषजः सहस्रमुर्वी गभीरा सुमतिष्ठे अस्तु बाधस्व दूरे निर्ऋतं पराचैः कृतं चिदेनः प्रमुग्ध्यस्मत्। पदार्थ राजन, हे प्रकाशमान प्रजाध्यक्ष व प्रजाजन, जिस भिषजः सर्व रोग निवारण करने वाले ते आपकी शतम असंख्यात औषधि और सहस्त्रम असंख्यात गभीरा गहरी उर्वी विस्तार युक्त भूमि है, उस निर्ऋतिम भूमि की त्वम आप सुमति उत्तम बुद्धिमान होके रक्षा करो। जो दुष्ट स्वभाव युक्त प्राणी के प्रमुमुग्धि दुष्ट कर्मों को छुड़ा दे, और जो पराचयी धर्म से अलग होने वालों ने कृतम किया हुआ एनह पाप है उसको अस्मत हम लोगों से दूरे दूर रखिए, और उन दुष्टों को उनके कर्म के अनुकूल फल देकर आप बाधस्व उनकी ताड़ना और हम लोगों के दोषों का भी निवारण कीजिए। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को जानना चाहिए कि जो सभाध्यक्ष और प्रजा के उत्तम मनुष्य पाप व सर्वरोग निवारण और पृथ्वी के धारण करने अत्यंत बुद्धि बल देकर दुष्टों को दंड दिलवाने वाले होते हैं वे ही सेवा के योग्य हैं। और यह भी जानना कि किसी का किया हुआ पाप भोग के बिना निवृत्त नहीं होता, और इसके निवारण के लिए कुछ परमेश्वर की प्रार्थना व अपने अपना पुरुषार्थ करना भी योग्य ही है। किंतु यह तो है जो कर्म जीव वर्तमान में करता व करेगा उसकी निवृत्ति के लिए जो परमेश्वर की प्रार्थना व उपदेश भी होता है। देखिए, दो प्रकार की सत्ताएं होती हैं जिसके अधीन सभी मनुष्य होते हैं। सबसे पहली सत्ता वो होती है जो मनुष्यों द्वारा संचालित है। परमपिता परमेश्वर ने इस संसार की संरचना कुछ इस प्रकार की की है, सब जीव योनियों का विभाग इस प्रकार से किया है कि उसमें मनुष्य को एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि दी है और संचालन करने की शक्ति दी है। अन्य प्राणियों के मुकाबले मनुष्य का जो चिंतन स्तर है वो व्यापक होता है, वो ज़्यादा दूर तक ज़्यादा बड़ा बड़े पैमाने पर सोच सकता है। अन्य जीव ऐसा नहीं कर सकते। अन्य जीवों के साथ उनकी जो योनियों की या कह लीजिए डीएनए की बाध्यताएं होती हैं, उनको वे जितने भी जीव जंतु हैं अन्य, उनका जो सबसे पहला जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो अपने आप को जिंदा रखना होता है, और उसके लिए वे अपना प्रजनन और भोजन और निद्रा इन तीनों के बीच में इनका सारा जीवन फंसा हुआ होता है। परंतु मनुष्य इससे बहुत आगे का कार्य कर सकता है, इसीलिए मनुष्य समाज की रचना करता है और समाज में जो नियम होते हैं उनका संचालन करता है, और उन नियमों के अनुसार वह सभी लोगों को चलाने की कोशिश करता है। अब इसमें निर्भर ये करता है कि जिन नियमों के आधार पर मनुष्य समाज की रचना कर रहा है और जिन नियमों के आधार पर वह सभी मनुष्यों को चलाने की कोशिश कर रहा है, व्यवस्था देने की कोशिश कर रहा है, वह उस ज्ञान का, उस व्यवस्था के पीछे जो सोच है, जो उसका ज्ञान है, उसका आधार क्या है। आधार दो तरह के हो सकते हैं। पहला आधार ये हो सकता है कि मनुष्य का जो भी एक्सपीरियंस रहा है अब तक, जो भी वो समाज का नियम बनाने वाले लोग हैं उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, उन लोगों ने जो भी देखा सोचा समझा है पीछे अपने इतिहास से, उसके आधार पे कच्ची पक्की व्यवस्था बना दें जिससे कि काम चलता रहे। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि हम इससे बड़ी जो सत्ता चलती है उसको जानकर उसके आधार पर अपनी छोटी सत्ता का निर्माण करें। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि वह बड़ी सत्ता कौन सी है। जिस प्रकार से मनुष्य प्रजा कहलाई जाती है, मनुष्यों का जो समूह है वह प्रजा राष्ट्र समाज कहलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप इसमें और जीव जंतुओं को इंक्लूड कर दें, जिसमें शेर चीता वायरस फलाना ढिकाना सब जो जो मनुष्य जानता है जो नहीं भी जानता उन सबको अगर हम इंक्लूड कर दें तो वो भी एक प्रजा बन जाती है, उनकी भी एक व्यवस्था होती है क्योंकि उनका भी अस्तित्व है जैसे मनुष्य का है। और उस जिस प्रकार से मनुष्य अपना संचालन करता है ठीक उसी प्रकार से उन सभी समूह का, जिसमें मनुष्य के अलावा और लोग और जीव जंतु योनियां भी हैं, उनका भी संचालन किसी न किसी नियम के अनुसार होता ही होगा, क्योंकि अस्तित्व में आने के बाद उनको किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता। हमने पिछले मंत्र में चर्चा की थी कि ईश्वर ने किस प्रकार से जीवों का और व्यवस्थाओं का विभाग किया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से जब उसने इतने सब चीज़ों को जन्म दिया है उस परमात्मा ने, तो उसने उसकी कोई व्यवस्था की होगी, और उस व्यवस्था का कोई नॉलेज तो होगा, उसका कोई आधार तो होगा। अब जो जिस ज्ञान के अनुसार ईश्वर इन सब सत्ताओं का संचालन करते हैं एक राजा की भांति, वो सारा ज्ञान ईश्वर ने वेद के अनुसार दिया है। किस रूप में दिया है? आदेश और निषेध के रूप में, भाई ये करो ये मत करो। और किसे दिया है? मनुष्य को दिया है, क्योंकि और जीव जंतु ये समझ नहीं सकते। तो इस तरह से अगर हम इस सभी समस्त समुदाय को एक क्लास मान ले, तो मनुष्य उस क्लास का मॉनिटर है और परमात्मा कह लीजिए प्रिंसिपल है या क्लास टीचर है। तो ये परमेश्वर परमेश्वर इन सबको इस प्रकार से मनुष्य को वेद के माध्यम, और वेद क्या है? सिलेबस है। तो इस सिलेबस के अनुसार परमात्मा बताते हैं कि देखो ये हमारा ज्ञान है, इसके अनुसार हमारी व्यवस्था है, तुम भी अपनी व्यवस्था इसी के आधार पे करो। अगर मनुष्य उसकी सिंक्रोनाइजेशन में अपनी समाज की व्यवस्था करता है उस आदेश और निषेध के अनुसार कि ये कार्य करने चाहिए ये कार्य नहीं करने चाहिए, और तो वो जो व्यवस्था कही जाएगी वो सर्वश्रेष्ठ कही जाएगी। उसका उसका कारण है, उसका कारण ये है, सर्वश्रेष्ठ वो इसलिए होगी क्योंकि उसमें त्रुटियों की गुंजाइश सबसे कम से कम होगी। कम से कम इसलिए होगी क्योंकि वो जिसके ज्ञान के आधार पर है, मतलब आप इसे समझ लीजिए कि सब्सिडियरी है उसकी। जो प्राइमरी सत्ता है, जो प्राइमरी कानून है, वो परमात्मा का वेद के अनुसार है, और उसके अनुसार जो हमने अपनी व्यवस्था बनाई है वो सेकेंडरी है, उसके उस पर आधारित है, मतलब निमित्तिक है, उसके निमित्त के उस पर आधारित है। हमारी अपनी बिल्कुल स्क्रैच से शुरू की हुई नहीं है, पर वेद पर आधारित है। और वेद जो है वो परमेश्वर का ज्ञान है, और परमेश्वर जो है वह संपूर्ण है, परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, तो उनके ज्ञान में तो कोई त्रुटि होने से रही। तो यदि उनके अनुसार हम सिंक्रोनाइजेशन में, यानी उससे बिना किसी विरोध के, हम अपनी सत्ता को अगर बनाते हैं, ऐसे राज्य का संचालन करते हैं, राज्य की स्थापना करते हैं, तो उस राज्य पर कभी भी संकट किसी भी प्रकार का आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो उसको चलाने वाला राजा होगा वो हमेशा उन आदेश और निषेध का पालन करेगा जो ईश्वर ने मनुष्य को दिए हैं सुखी रहने के लिए। और जो वह सब स्वयं पालन करेगा और समस्त प्रजाजनों को उसका से पालन करवाएगा, तो सर्वत्र सुख शांति और आनंद की ही स्थिति बनी रहेगी। परंतु जो राजा मूर्खतावश या अज्ञानतावश अहंकारवश उससे विपरीत जाने की कोशिश करता है, उसका राज्य टिकता नहीं है, वो राज्य धराशायी होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और पीछे आप अगर देखें, अक्षुण्ण राज्य जो था वह महाभारत काल तक था। महाभारत काल तक जो भी राजा हुआ करते थे, छोटे मोटे मंडल होते होंगे, परंतु एक अखंड राज्य मतलब कई बार हुआ करते थे, क्योंकि कोई ना कोई धर्मात्मा बीच में राजा आ जाया करता था जो कि वेद के अनुसार अपने राज्य का संचालन करता था, और वो चक्रवर्ती राज्य की स्थापना कर ही डालता था फिर। परंतु मनुष्य देखिए अल्पायु होता है, एक निश्चित काल के बाद मनुष्य की अवधि नहीं रहती, उसके बाद वाले जो आएंगे वो जरूरी नहीं है कि वो उसी बुद्धि वाले हों, उसी विचारधारा वाले हों, उन्होंने अपनी खिचड़ी पकाई होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इतिहास में राज्य बनते और बिगड़ते चले गए, और खासकर अगर महाभारत काल के बाद अगर आप देखें तो राज्यों की जो अवधि है वो तो बहुत ही छोटी रह गई। मतलब सबसे पहले तो ये वेद के अनुसार जो चलने का जो एक परंपरा थी वो सबसे पहले भारत से ही गायब हुई। बाहर वालों को तो आप छोड़ ही दो, उनको तो पता ही नहीं था इसके बारे में। जिसको इस ज्ञान की जानकारी थी, उस ज्ञान की भूमि पर ही उसकी सबसे बड़ी अवहेलना प्रारंभ हुई। और यही कारण है कि सबसे विश्व में सर्वाधिक आघात झेलने वाला भी भारत देश बना, ये भूमि बनी, उसका दंड तो इसको भुगतना ही था। और जब जब इसने उन आदेशों और निषेधों की अवहेलना की, तो राज्यों की अवधि ज़्यादा बनी नहीं, हुई बिगड़ गई वाली स्थिति रही। आगे भी ऐसे रहेगा तो आगे भी यही होगा, क्योंकि कर्म का जो फल है वो मिलेगा ही मिलेगा, जैसा कर्म होगा वो ईश्वर की व्यवस्था से फल मिलना ही मिलना है। तो इस प्रकार से ये जो मंत्र है वो यही कहता है कि ईश्वर के नियमों के अनुकूल आप अपने हे राजन अपने राज्य की का विस्तार, उसकी सुरक्षा कीजिए, और जिस प्रकार से जो दुष्ट कर्म करने वाले लोग हैं उनको ग्रांटेड मत छोड़िए। कई लोग अपने अपने छोटे छोटे एनजीओ संगठन बना के आ जाते हैं, ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार, परंतु होता ही है कि वास्तव में वो दानवाधिकारियों की बातें करते हैं, ना कि मानवाधिकारों की बातें करते हैं। वे लोग हमेशा उन चीज़ों को बैक करने की कोशिश करते हैं जिनका दूरगामी परिणाम पूरी समस्त मानव जाति पर बहुत बुरा पड़ने वाला है। उदाहरण के लिए कोई आतंकवादी कुछ लोगों को अपनी विचारधारा की पुष्टि के लिए मार डालता है, निर्दोष लोगों को, तो उनकी सुरक्षा को लेकर ये सब लोग एक्टिव हो जाते हैं। रात रात भर कोर्ट को खुलवा देते हैं, सबको बुलवा लेते हैं और उसको छुड़ाने की मांग करने लगते हैं। तो होता क्या है कि जो जज होता होगा, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम फिर क्या उनकी व्यवस्था होगी, पर ऐसा अनुमान लगता है कि कन्फ्यूजन का माहौल होता होगा कि हाँ ये भी तो इंसान है, ये तो ऐसा है, इनको छोड़ दो, क्या इनका आगे सुधर जाएंगे। लेकिन होता क्या है, वो बाहर निकल के और ज़्यादा लोगों को मारता है। तो ये जो मंत्र है वेद का, वो ये कहता है कि दुष्ट लोगों पर तो राजन आपको सॉफ्ट होना ही नहीं है, क्योंकि यदि आप सॉफ्ट हो गए तो जब वो बाहर निकल के अपराध करेगा, वो अपराधी, तो उसके अपराध में आप उससे भी ज्यादा बड़े भागी बनोगे। और इस आदेश को ये मंत्र बोलता है कि आप इस प्रकार से ऐसा ना करें, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही न्याय करें, जैसे ईश्वर करते हैं। ईश्वर कभी भी किसी के पापों को क्षमा नहीं करते। ईश्वर जो भी मनुष्य कार्य करता है, उसके कर्मों का फल उसको अवश्य देते ही हैं। तो जिस प्रकार से ईश्वर करते हैं, ठीक वैसे ही आपको भी करना चाहिए। तो एक तरह से इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि परमात्मा जिस प्रकार से अपने राज्य का संचालन करते हैं, उसके अनुसार आपको भी करना चाहिए। ओ